ओम शांति। आज हमारे बीच जापान से ललिता बेन जी आए हैं, तो एक बहुत सुंदर विषय है भावनात्मक स्थिरता, इमोशनल स्टेबिलिटी। इस विषय पर ललिता बेन जी अपने विचार हमारे सम्मुख रखेंगे और अपने जीवन का अनुभव भी थोड़ा थोड़ा उसके बीच में सुनाएंगे। ओम शांति।
ओम शांति। इतनी नशे की बातें तो सुन ली, और अब जो सुनने वाले हैं उसका उल्टा है शायद, बिकॉज टॉपिक क्या है आज का? इमोशनल स्टेबिलिटी। ये टॉपिक जो है ये अंग्रेजी का है, और बोलना किसमें? हिंदी में। अभी बात हो रही थी भाषाओं की, कि सोल कॉन्शियस का मतलब होता है कि भाषा के परे जाओ। कितना हम भाषा से परे जा सकते हैं? जब कोई कहे एकदम से किसी और भाषा में बात करो तो स्टेबिलिटी होती है कि नहीं होती है? एकदम नर्वस हो जाते हैं लोग। तो ये सोल कॉन्शियस की बात बहुत डीप है, ये कनेक्टेड है इससे। तो अभी मैं इस सीट पे बैठी हूं स्टेबिलिटी, क्योंकि हमारे कहानी है ना, वो एक नहीं एक बच्चे की, वो जो जब बच्चा जब भी खेलते थे वो लोग, फिर एक छोटी सी पहाड़ी थी हल्की सी, वो जब बच्चा वहां बैठता था तो बहुत अलग ढंग से बात करता था, उसके अंदर से इतनी गहरी गहरी बातें निकलती थी। तो मुझे अब ध्यान आया कि सचिन भाई उठे तो मैं यहां बैठ गई, तो ये कुर्सी में कुछ है कि बैठते ही कुछ मेरा अपने आप ही कुछ निकलने वाला है, मैं कुछ करने वाली नहीं हूं। तो दिस इज वेरी गुड, अच्छा हो गया ना, ये तो बहुत बढ़िया हो गया। तो स्टेबिलिटी तो हो ही गई, अभी जादू है। अब यहां बैठे तो सभी स्टेबल होंगे, स्थिर। कोई है अभी अनस्टेबल यहां पर? सुबह का टाइम है, अमृत वेला करके आए हैं, कोई कोई हो ही नहीं सकता। लेकिन दिन भर तो बहुत कुछ होता है, और जीवन में भी बहुत कुछ होता है। तो अभी हम पहले ये एक वर्कशॉप की तरह करेंगे, कि स्टेप बाय स्टेप आपसे सवाल भी पूछूंगी, आप जवाब भी देंगे, कि ये जो इमोशनल स्टेबिलिटी कहते हैं, इमोशन क्या होता है? हिंदी में कोई इसको भावना कहता है, लेकिन भावना तो अच्छी भावना, बुरी भावना, शुभ भावना, ये हम कहते हैं। सो एक्चुअली हम भावना शब्द भी यूज नहीं कर पाएंगे इमोशन के लिए, वो कुछ और ही होगा। इमोशन सिर्फ एक फीलिंग है, क्या सोचते हैं? ये इमोशन शब्द जो है, क्योंकि इसमें अंग्रेजी में शब्द है इमोशन, मोशन समझते हैं? हाँ, तो मोशन मतलब कोई मूवमेंट, जैसे लोग मोशन सिकनेस कहते हैं, मोशन सिकनेस, जैसे आप गाड़ी में बैठते हैं, शिप में जाते हैं, तो आपका तबीयत खराब हो जाती है, आपके अंदर कुछ कुछ हलचल होने लगती है, सो यू थ्रो अप, तो वो इसको मोशन सिकनेस कहते हैं। वो तो शरीर का मोशन है, इसमें क्या हो रहा है? ई मोशन। इसमें हमारे अंदर, मन के अंदर बहुत सारे मोशंस बहुत स्ट्रांगली चल रहे हैं। देखिए, फीलिंग भावना तो सब में है, हमारे सब में है, लेकिन इमोशनल हो जाते हैं लोग, कहते हैं ना इमोशनल मत हो जाओ, ये बहुत इमोशनल है, इसको कुछ कहते हैं बहुत जल्दी इमोशनल हो जाता है। क्या अर्थ है इसका? सेंसिटिव। सेंसिटिव का अर्थ क्या है? नाजुक का अर्थ क्या है? क्या होता क्या उसको? टच मी नॉट का क्या होता है? हाथ लगाने से क्या होता है? लाजवंती होता क्या है? ये तो सब वर्ड है, होता क्या है उसको? शर्म आ जाती है, शर्मा जाते हैं, हलचल, किस तरह की हलचल? कमजोर हो जाते हैं, चिंतन चलता ही नहीं है। सबसे बड़ी बात क्या है इमोशन में? कि चिंतन ही नहीं चल रहा है, सिर्फ वो भावना, वो इमोशन इतनी जबरदस्त निकल के आती है बाहर, खुद को भी नहीं पता लगता। अब इंटॉक्सिकेशन की बात चल रही थी, ये इमोशनल चीज ऐसी कि आदमी सोचता ही नहीं उसके बारे में, वो ऐसे उसको तूफान की तरह आ जाता, जैसे कि उसको हिंदी में शायद भावेश कहेंगे, भावना का आवेश। सोच नहीं सकता इंसान उस समय, कुछ भी कर सकता है, उसमें इंटॉक्सिकेशन नहीं चाहिए। तो ये इमोशन जो है, इसके बारे में हमको समझना बहुत जरूरी है। हम कहते हैं कि जब हम सोल कॉन्शियस हैं तो हम इमोशनल नहीं हैं। कल एक बात चली थी कि लव इज नॉट एन इमोशन, लव इज नॉट एन इमोशन, प्रेम इमोशन है कि नहीं है? है, कोई कहेगा नहीं है, प्रेम तो क्वालिटी है, प्रेम तो हमारे अंदर की क्वालिटी है ना, ये तो हमारे आत्मा के अंदर जैसे भरी हुई है, डीएनए हमारा। लेकिन वो प्रेम को अगर कुछ का तब्दीली हो जाए, बदल जाए, तो इमोशन होगा वो। तो उस लव को अगर बहुत ही ज्यादा वर्ल्डली हो जाए वो लव, वो वर्ल्ड ना, वो लव ना सोचे, ना आगे ना पीछे ना कुछ, बस जो उसको करना है वही करे, उसको आप इमोशनल कहेंगे। अंग्रेजी में इसको इंटॉक्सिकेशन कहा भी, लेकिन इसको वो भी कह सकते हैं। तो अभी इमोशन मैं देख रही थी, इसका अर्थ क्या है, एक बहुत बड़ी स्ट्रांग फीलिंग है। जैसे ही बाहर कुछ हुआ, स्टिमुलस कहते हैं, बाहर जैसे ही कुछ हुआ मेरे अंदर एक उत्तेजना आ गई, उस बात ने मुझे इतनी जबरदस्त, मेरे अंदर उसका प्रभाव पड़ा, तो उसको हम इमोशन कहेंगे। और फिर ये क्या होता है, ये हमारे रिश्तों में हो सकता है, ज्यादातर रिश्तों में होता है। बहुत ज्यादा आंधी आ गई, तूफान आ गया, उसमें आदमी इमोशनल नहीं होता है। ज्यादातर हम इमोशनल कब होते हैं, जब हम संबंधों में। और फिर उसमें क्या होता है, जैसे अभी बताया कि जब नशा चढ़ता है तो आदमी कुछ भी कर लेता है, इमोशनल कभी इमोशनल ऐसा होता है कि आदमी बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाता है, टेरिफाइंग, मतलब कि डरावना, डरावनी शक्ति उसमें आ सकती है कई बार, इतना ज्यादा वो इमोशनल हो सकता है। तो अब इसमें हमें यह देखना है कि ये हमारा जो मन है ना, वो बहुत तेजी से चलने लग जाता है, उसकी एक्टिविटी बहुत ज्यादा तेज हो जाती है, हमारे हाथ में नहीं होता वो। वैसे हम मेंटली स्टेबल होते हैं, जब हम कहते हैं हम योग कर रहे हैं, कैसे होते हैं, हम उसमें मेंटल एक्टिविटी कितनी होती है, जितनी कम हो कम हो कम हो, उसको आप कहेंगे योग की स्टेज बहुत हाई है। लेकिन इमोशन में मेंटल एक्टिविटी बहुत ज्यादा तेज हो जाती है। योग की बात तो छोड़ ही दो आप, उस समय तो मैं कौन हूं यही होश नहीं आ रहा है, पिए बिना ही होश नहीं है उस समय तो। तो अब ये इसके बारे में हमको सोचना है कि इस समय जब हमारा इमोशन होता है बहुत ज्यादा ही, भावुक से भी बढ़ जाता है, उस समय सोच नहीं चलती है, थॉट्स है ही नहीं, ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये ठीक है गलत है, ऐसे हो रहा है वैसे हो रहा है, इंसान सोचता ही नहीं है इमोशनल में, बस इमोशन आ रहा है, बस आ रहा है आ रहा है, और वो उसको इमोशन में बहना ही है उसको, और इस इमोशन के कारण वो क्या क्या नहीं कर लेगा। इमोशंस अच्छे होते हैं बुरे होते हैं, अच्छे होते हैं बुरे होते हैं, कौन से अच्छे होते हैं,
खुशी होती है तो उसमें इमोशन हो जाता है।
हाँ, जब वो भावुक हो जाता है खुशी से, तो उसको क्या कहेंगे, तो बहुत भावुक हो गया है, तो वो खुशी से क्या करता है, वो नाचता है, वो तो उसको है। इमोशनल में क्या होता है कि कई चीजें सिर्फ, हाँ, वो आप जैसे कोई पिक्चर देखता है तो फिर इमोशनल हो जाता है, कहते बहुत इमोशनल हो गया ये, है ना। तो वो आंसू जो आ रहा है वो कई बार दुख से आते हैं ना, जब पिक्चर देखते हैं तो खुशी में आंसू आते हैं, किसी को आपको आए हैं कभी पिक्चर देख के खुशी में आंसू, किसको आए हैं। लेकिन कोई सैड सीन देख लिया, कोई बिछड़ गया, वो सीन देखा तो कैसा लगता है, आंसू आया, तो वो नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, क्या कहेगा बाबा, क्या कहेगा उसको। हाँ, ज्यादातर इमोशंस नेगेटिव में कैटेगरी में ही आते हैं, मेरे ख्याल से कोई भी इमोशन पॉजिटिव कैटेगरी में नहीं आता, क्यों सचिन भाई, वो इमोशन नहीं होगा, वो इमोशन वो आपकी फीलिंग होगी, वो आपकी क्वालिटी है जो अंदर की सोल की आ रही है, यू फीलिंग सो गुड सो ग्रेट, ये आपकी ओरिजिनल क्वालिटी है। इमोशनल ओरिजिनल क्वालिटी है हमारी, सोचिए, इमोशनल ओरिजिनल क्वालिटी है आत्मा की, नहीं हो सकती, इमोशन में योग ही नहीं है। गदगद होना, गदगद होना का मतलब हमारे अंदर जो ब्लिस है, हमारे अंदर जो डिविनिटी है वो बाहर आ गई है, वो उसमें हमें पता लग रहा है कि हम कैसे हैं, लेकिन इमोशन में तो पता ही नहीं लग रहा है क्या हो रहा है, मालूम ही नहीं पड़ता है। हाँ, कंट्रोलेबल नहीं, बिल्कुल कंट्रोल, डिस्टर्बेंस है ये, बहुत बड़ी डिस्टर्बेंस है ये। तो इमोशनल ज्यादातर नेगेटिव, इसलिए कहा जाता है इमोशनल स्टेबिलिटी। टॉपिक आज का क्या चुना, अगर इमोशन अच्छा ही होता तो ठीक है, अच्छे हैं तो बहुत बढ़िया, फिर तो स्टेबल होने की जरूरत ही नहीं आपको, लेकिन इमोशनल होना नेगेटिव है और उसमें स्टेबिलिटी चाहिए हमें। कलयुग में तो कोई भी चीज स्टेबल नहीं है, बात तो सही है, लेकिन हमारा मन ही अगर पूरा पूरी तरह से अनस्टेबल हो जाए तो उसको हमको कैसे सही रास्ते पे लाना है वो हम बाद में बात करेंगे। अब गुड बैड देख लिया, ओरिजिनल क्वालिटी नहीं है इमोशन। जब भी आप इमोशनल होते हैं तो समझ लीजिए कि आप हम बिल्कुल टोटली सोल कॉन्शियस नहीं है, उस समय नहीं है, टोटली बॉडी कॉन्शियस है। अच्छा, फिर अब ये लौकिक दुनिया में बहुत सारी बातें आती हैं हमारी लाइफ में। कुछ इमोशंस बहुत तेज होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, कुछ शायद थोड़े कम भी हो सकते हैं। अब जैसे कि दुनिया में अब कितना कुछ चल रहा है, आप देख रहे हैं ना आजकल प्रकृति का प्रकोप, पानी का कहर, जो भी लोग कह रहे हैं आजकल कितना कुछ चल रहा है, उसको जब आप देखते हैं कोई फीलिंग आती है? सुनते हैं न्यूज, कुछ हो रहा है कुछ नहीं होता है, होता है कि नहीं होता है बहने? थोड़ा बहुत होता है, इधर होता है, होना चाहिए नहीं होना चाहिए? देखा आजकल हम क्या हो गए हैं, देख देख के भी हो रहा है ना, बाबा ने कहा ना होना ही है, ठीक है होने दो, ये क्या है, हमारी फीलिंग ही नहीं उसमें, कोई इमोशनल नहीं होना है, फर्क है इसमें, पर फीलिंग नहीं होनी चाहिए क्या कोई भी? इतनी चीजें देख रहे हैं कर रहे हैं, बस ये तो क्या हो गया ना, हमको धीरे धीरे या तो बहुत ज्यादा हो गया है, भारत में जैसे बहुत ज्यादा हो जाता है तो फिर लोग उसे मतलब ऑब्लिवियस हो जाते हैं कि ठीक है हो रहा तो होने दो जी, तो ये तो रोज ही होता है। ये हमारा हार्ट जो है ना काम करना बंद कर देता है कई बार। फिर एक हम योगी हैं, अरे भाई योगी है ना, तो योगी है कि योगी थोड़ी कुछ फील कर सकता है, जो हो रहा है ठीक है होने दो, बाबा को कुछ फीलिंग नहीं है हमारे लिए क्या? वो जो आया है ऊपर से वो भी कह देता कि भाई हो रहा है इनको होने दो, जो हो रहा है ठीक है अपने आप निपटा लेंगे ये सब ड्रामा, पर आता है ना वो नहीं करे कुछ, ड्रामा है ऊपर ही बैठ जाए। लेकिन ये फर्क देखना पड़ेगा हमको, हम कई बार योगी जो है ना योगी होके ये भ्रमक बीके ब्राह्मण बन के कई बार हम बहुत पत्थर दिल भी बन जाते हैं। पत्थर कहे कि हमारे अंदर फीलिंग ही नहीं आती है, क्योंकि हम समझते हैं कि फीलिंग आना गलत है, इमोशन गलत है। हाँ, इमोशन इज नॉट गुड, बट फीलिंग तो होनी चाहिए ना, क्योंकि हम आत्मा चैतन्य है ना, चैतन्य में फीलिंग ही नहीं होगी तो क्या होगा? इसीलिए कई बार लोग समझते हैं कि आप लोगों को तो कोई फीलिंग ही नहीं है, कुछ भी हो जाता है आप लोग तो बस वैसे की वैसे ही हैं, हमारे लिए फील नहीं कर रहे हैं। एम्पथी है उस समय, सिंपथी है कि नहीं हमको? सिंपथी एम्पथी इज नॉट इमोशनल, सिंपथी एम्पथी हमारे अंदर की अंदर हमारे अंदर फीलिंग हमारी होनी चाहिए। ये तो हमें चेक करना है कि कभी भी ऐसी कोई बात हो जाए बाहर लोगों के साथ, किसी और के साथ, अपने संबंधियों के साथ, तो हमको कैसा उस समय महसूस करना चाहिए। अब उसके बाद एक बात आती है कि जैसे कुछ हो रहा है, हम समझते हैं कि नहीं हम ब्राह्मण हैं, हमको कोई किसी ने कुछ कह दिया है, कुछ ऑफिस में कुछ हो गया है, मैं ठीक हूं, मुझे कुछ फीलिंग नहीं आनी चाहिए, उसको हम क्या करते हैं? दबा देते हैं। फील हो रहा होता है लेकिन उस फीलिंग को हमने बदला नहीं है, हम सिर्फ कहते हैं हम ब्राह्मण हैं, हमको ये सब फीलिंग नहीं आनी चाहिए, बाबा ने बोला है। तो क्या होता है फिर? वो ठीक है, वो ठीक है, क्या करना चाहिए जी? उसको बदलना पड़े, नहीं तो क्या होगा, वो फीलिंग सप्रेस हो जाती है और फिर वो एक ज्वालामुखी की तरह फूट जाती है, किसी समय जरा सी बात पे फूट जाएंगे, तो वो इमोशनल नहीं है, वो मुझे देखना पड़ेगा कि उस समय मुझे कैसी फीलिंग आ रही है और उसको मुझे उस समय परिवर्तन करना पड़ेगा। क्योंकि हमने अक्सर ऐसे लोगों को देखा है, बहुत अच्छे ब्राह्मण, बहुत बढ़िया, अचानक छोटी सी बात पर, इतनी छोटी सी बात भड़क जाते हैं, रोने लग जाते हैं, बात करना बंद कर देते हैं। क्या हुआ ये वो सिचुएशन के कारण तो नहीं हुआ ना, ये ट्रिगर हुआ ना, ट्रिगर माने अंदर दबा के रखा था कितना कुछ। तो इमोशनल होना अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन कोई फीलिंग मुझे आ रही है, मुझे उसके साथ डील करना जरूरी है। अब हम क्या कहते हैं, सब कुछ ठीक है ठीक है, ये हमको बदलना पड़ेगा कि हम हाँ आपके साथ जो हो रहा है बस ठीक है मुझे मालूम है, लेकिन उस समय कुछ दिखा नहीं रहे उसको, उस आत्मा को उस समय मुझसे क्या चाहिए वो मुझे जानना जरूरी है। अब कई बार क्या होता, मुझे कुछ दिन पहले कुछ लोग मिले, उन्होंने कहा कि हम ये जब लौकिक में जैसे कुछ फ्रेंड्स उन्होंने कहा जब ये दुनिया में सब देखते हैं ना, इतनी गरीबी है, इतना दुख है, ये सब देखते हो तो हमें बड़ा मिजरी जो देखते हैं ऐसा लगता है कि हम बड़े हेल्पलेस हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो उस आत्मा को बड़ा दुख हो रहा था, दुख होगा, देख रहा है ना वो सब क्या हो रहा है, उसको बहुत बुरा लग रहा था। तो उसको उसने पूछा मैं क्या करूं, मुझे लगता है मैं दुनिया के लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूं। अब बोलो उसको जी आ जाओ जी आप कोर्स कर लो, ब्राह्मण बन जाओ, ये तो आंसर नहीं है। ये आंसर ठीक है, आप आ जाओ आप कोर्स कर लो आप ठीक हो जाओगे। आप क्या करना चाहिए, दुनिया की हालत देखकर उसको लग रहा है कि मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं, मैं हेल्पलेस हूं, गरीबी बहुत है, बीमार लोग, रोगी बहुत लोग हैं, ये सब है वो सोच रहा है। तो उसको एक बड़ा अच्छा जवाब दिया किसी ने कि आप ये नहीं सोचो कि जो गरीब है जो बीमार है उसकी कैपेसिटी कम है। आप ये जब सोचते हो ना ये गरीब है बीमार है तो आप उसको ब्लॉक कर देते हो, आप समझते हो कुछ नहीं होगा, लेकिन हो सकता है। तो आपको पहले शुरू करना पड़ेगा अपने आसपास के जो लोग हैं उसके लिए आप क्या कर सकते हो। ऐसे बहुत सारे मुझे लोगों ने मैसेजेस भेजे हैं कि लोग भारत में कितना कुछ कर रहे हैं, कोई आदमी रोज खड़े होकर किसी को खाना खिला रहा है, कोई आदमी खड़े होकर किसी के लिए क्या कर रहा है, वो अपने आप लोग ढूंढ लेते हैं, काम छोड़ के ये कर रहे हैं, ये सब करते हैं लोग। तो उसके अंदर फीलिंग अच्छी आती है ना, वो इमोशनल नहीं हो रहे, वो फीलिंग है, वो फीलिंग से काम कर रहे हैं। इमोशन से काम करना अलग चीज होती है। तो इमोशन ये होता है कि इतना मुझे दुख हो जाए किसी चीज को देखकर कि मैं सोच ही नहीं पाऊं कि मैं क्या करूं। लेकिन जब हम थोड़े फीलिंग्स में आते हैं तब हम सही तरह से सोच सकते हैं कि हाँ हम भी कुछ कर सकते हैं, जो बाहर के जो मनुष्य हैं जो उनके लिए भी कुछ हम कर पा रहे हैं, नहीं तो फिर भावुकता ही होती रहेगी, अपने को दुखी लगता रहेगा। तो ऐसा नहीं है कि दुखी भी नहीं होना है, और ऐसा भी नहीं है कि मुझे सिर्फ उनके लिए कोई फीलिंग भी ना हो, बैलेंस चाहिए। बैलेंस जो होगा उसी को सोल कॉन्शियस कहेंगे हम। कोई इमोशन कोई फीलिंग ही नहीं वो सोल कॉन्शियस नहीं है। अब जैसे कि अगर हम दुनिया की हालत देख के अपसेट हो रहे हैं तो अपसेट को हमने फीलिंग को बदलना पड़ेगा, जैसे अभी सिस्टर ने बताया उसको हम कंपैशन में बदलना पड़ता है, करुणा। करुणा एक इमोशन है कि फीलिंग है? फीलिंग है ना। तो हम कितना, हमारे अंदर कितनी करुणा भरी हुई है, लोगों ने करुणा के कितने एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास, लोगों के उन्होंने करुणा के कारण कितना कुछ किया, उन लोगों ने, उनके अंदर वो थी, वो शक्ति है ना। एक इमोशनल होना शक्ति नहीं है, इमोशन जो है अपनी शक्ति को निकाल देता है, गिरा देता है आपकी शक्ति को, कम कर देता है। बट ये जो अंदर की जो क्वालिटीज हैं ये हमको आगे बढ़ाती हैं। तो कभी भी अगर मुझे लगे कि मेरी शक्ति कम हो रही है तो वो इमोशन के कारण है, वो फीलिंग्स के कारण नहीं है। सिर्फ जैसे अभी बताया ना कि थोड़ा सा पीने से इंटॉक्सिकेशन नहीं होता है, ज्यादा पीते हैं तो नशा चढ़ता है। तो फीलिंग इज ओके, बट जो फीलिंग बढ़ जाती है ज्यादा फिर वो इमोशन हो जाती है। अब ये जो हमारे अंदर, अगर हमारे अंदर कोई इमोशन आए, सपोज आपको इमोशन आ रहा है, इमोशन कैसा, कोई एंगर का आ गया, हेट का आ गया, डर का आ गया, ये इमोशन है, तो उस समय क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए उस समय? मैं ब्राह्मण हूं, मुझे ये सब नहीं आना चाहिए, मैं आत्मा हूं, क्या करना चाहिए? आ जाए और क्यों आ जाए, क्यों आना चाहिए? बाहरी बीमारी बाहर निकले और हाँ मुरली में था और नहीं, पर उस समय याद नहीं आएगी ना, उस समय तो वो आ गया, वो सब आ गया, आ ही रहा है तो याद करा देना। नहीं उस समय कोई है नहीं मेरे साथ, हम तो अकेले रहते भैया, हमारे साथ कोई नहीं है, वहां पर हमारे घर में कोई नहीं है, कोई याद कराने वाला भी नहीं है। तो नहीं, पर पहली बात मुझे जानना जरूरी है कि ये अगर इमोशंस मेरे पास आ रहे हैं मुझे उसको डिनाई नहीं करना है। लोग डिनाई करते हैं, वो क्या सोचते हैं, मैं ब्राह्मण हूं, अरे मुझे ऐसे तो आने नहीं चाहिए, कितनी खराब बात है, मैं तो एक बहुत पुण्य आत्मा हूं, मैं तो योगी आत्मा और मेरे अंदर ऐसी चीजें आ रही हैं, तो वो हम उसको डिनाई करते हैं। ये भी एक लेवल है कि मैं ब्राह्मण हूं, ये सोल कॉन्शियस नहीं है। सॉरी, खुद को ब्राह्मण समझना भी सोल कॉन्शियस नहीं है, क्योंकि हम लेबल लगा लेते हैं, नहीं मुझे ऐसा नहीं होना चाहिए, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। अरे आ रहा है ना ये इमोशन, है ना अंदर, तो उस समय इसको डिनाई नहीं करना। कई लोग इंग्लिश में कहते हैं डिनायल में रहते हैं, कि जैसे कोई घर पे कुछ हो गया, डिनाई नहीं हुआ है, नहीं हुआ नहीं है, वो बहुत डेंजरस है, बहुत खतरनाक चीज है वो, है कि नहीं, इट इज, है ना। तो ये पहली बात उसको डिनाई नहीं करो कि आ रही है चीज, सप्रेस नहीं करो, बताया, फिर उसको वेलकम करो कि ये मेरा अंदर चैलेंज आ रहा है, ये जो मुझे, मैं इसको अब कैसे फेस करूं, आया है ये फीलिंग्स में ही आ रहा है मेरे, बाहर से कहीं से नहीं आ रहा, अंदर से ही आ रहा है, इसको मैं कैसे कैसे इसको फेस करूं, क्या करूं इसके लिए, वो सेकेंड स्टेप है आपका। उस समय कंप्लेन नहीं कर सकते कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और फिर कई बार लोग अपने आप को हेट करने लग जाते हैं कि अरे मेरे अंदर इतने बुरी चीजें आ रही हैं, इतने खराब इमोशंस आ रहे हैं मेरे अंदर, मैं तो बहुत पापी आत्मा हूं। और ऐसे कई लोग हैं, लौकिक में भी हैं और यहां भी हैं, दोनों जगह हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं। कई लोग ज्ञान छोड़ के चले जाते हैं कि अरे मैं इतने साल से ज्ञान में और मैं सब ये कर रहा हूं, तो कितना अपने आप को, मतलब एक जैसे कोई कोड़े मारता है ना कि मेरे अंदर इतनी हेट की भावना कैसे आ गई, लस्ट की भावना कैसे आ गई, ये कैसे हो गया, तो होना ही है। तो पहली बात ये ध्यान में रखना, जब ऐसी चीजें आए डिनाई नहीं करें, सप्रेस नहीं करें, कंप्लेन नहीं करें, अपने आप को सेल्फ इन्फ्लेक्ट इंजरी नहीं करें उसके लिए, अपने आप को हेट नहीं करें। जैसे बोलते हैं ना साक्षी, ये साक्षी है देखना, इसको साक्षी माना जाएगा, सिचुएशन को साक्षी देखना इज अनदर थिंग, बट खुद को देखना। फिर उसके बाद मुझे ये सोचना चाहिए कि मुझे तो बहुत अनुभवी भी बना रही है चीजें, वाइज। वाइज कैसे बनता है आदमी, अनुभव कैसे बनता है, मुरलियां पढ़ पढ़ के अनुभव हो जाएगा, हमें 10 बार मुरली पढ़ ली मैंने, हो जाएगा अनुभव? हाँ होगा, योग में कितना भी बैठेंगे होगा अनुभव। हम क्यों ये दादियों के बारे में इतनी बातें करते हैं, ये कहां कहां से गुजरे हैं, ये ब्रह्मा बाबा दादियां कहां कहां से गुजरी हैं, इनके कितने अनुभव हैं, हम इनके अनुभवों को बैठ के सुनने लगते हैं, क्लास ही पूरी अनुभवों की होती है, मुरली पढ़ लें, क्यों सुन रहे हैं क्लास अनुभवों की, ये उसके साथ हुई, उस आत्मा के साथ ये बात हुई है, और ये जो अनुभव है यही मुझे पक्का बना गया। तो हमें वेलकम करना चाहिए, आए इमोशंस कोई बात नहीं, परिस्थितियां आए जो मुझे हिलाएं, तब हम स्थिर बन सकते हैं। कोई कहेगा जी हिलो ही नहीं, आज का टॉपिक क्या है, इमोशनल स्टेबिलिटी, हिलो ही नहीं, अरे पता लगे ना पहले हिलाने वाली चीजें, तभी तो स्थिर रहेंगे, पहले से ही है। तो ये इसलिए हमको एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है इस चीज को। पेपर एक बाहर के आते हैं, प्रकृति के पेपर आते हैं, और उसके एक आते हैं इमोशनल, ये बहुत तेज होते हैं, इसका पता भी नहीं लगता कई बार, भाव भी बहुत तेज होता है इसका। तो इसलिए मुझे समझना चाहिए। उस समय एक और बात बड़ी अच्छी होती है कि इसको जब हम एक्सेप्ट कर लेते हैं तो हमें भगवान से ज्यादा प्यार होता है, क्योंकि हम समझते हैं कि अब मुझे उसकी तो बड़ी जरूरत है। जब ठीक चल रहे हैं तो ठीक चल रहे हैं, लेकिन जब ऐसी चीजें आती हैं तब मुझे लगता है कि हाँ सच में वो जो है वो एक ही आत्मा है जो इससे बिल्कुल परे है, और वो ही मेरे लिए सब कर सकता है ना, आई हैव टू गो टू हिम, चाहे वह लौकिक हो चाहे यहां हो। तो उस समय उसकी जो वैल्यू कहेंगे ना भगवान की, वो बढ़ जाती है, वी वैल्यू हिम मोर एक्चुअली, नहीं तो टेक फॉर ग्रांटेड हो जाता है कि वो है ही है। अब इसके बाद दूसरी बात आती है कि ये सब चीजें जो आ रही हैं, लोग कहते हैं जैसे आग से निकलना, जैसे सीता के बारे में था कि उसको आग से जाना पड़ेगा दिखाने के लिए कि वो कितनी पवित्र है, ये सब चीजें एक आग की तरह है जिसके थ्रू हम जब जाते हैं तो हम प्यूरिफाई हो जाते हैं, अगर हम सही ढंग से उसे गुजरें तो। ये एक प्यूरिफिकेशन प्रोसेस है मेरा, जो मुझे इमोशन आते हैं अंदर से सब निकलता है, प्यूरिफाई हो रहे हैं हम, इसको हम ऐसे समझें। अब सबसे बड़ी इमोशनल इंस्टेबिलिटी कब होती है, स्थिरता नहीं अस्थिर कहेंगे, हाँ सबसे ज्यादा कब होती है, कोई एग्जांपल बताएंगे आप ठोस, धोखा दिया किसी ने, बहुत अच्छे फ्रेंड थे, बहुत अच्छे थे और अचानक ही हो गया, किसी ने मेरे पर आरोप लगा दिया कि आप ऐसे वैसे और बहुत बुरी तरह से बताई ये बातें, और करते हैं मैंने
कुछ भी है जिसे धोखा दिया हमको, कुछ क्लोज पर्सन से जब हमको कुछ ऐसे कुछ होता है तो हम उस समय ज्यादा ये हो जाते,
बाहर का कोई दूर का करता तो नहीं होता है, तो अटैचमेंट की बात आ गई ना उसमें तो। और
अचानक
हो जाता है कोई चीज, अचानक है, हम जानते हैं कि होगा और धीरे से हो तो ले लेते हैं, लेकिन अचानक होता तो नहीं ले सकते। और कुछ
नहीं होता तो भी होती,
क्या होता है,
कुछ भी नहीं होता तो भी होती है,
वो अंदर से आ रही होती फिर तो, हाँ वो तो आ ही रही होती अंदर से, लेकिन ठोस कोई सी चीज बताइए जिसमें कि सच में मनुष्य स्थिर हो सकता है, अस्थिर, कोई नजदीक का संबंधी शरीर छोड़े। लेकिन बाबा ने तो बताया कि जाना ही है, सबको तो जाना ही है, शरीर छोड़ना ही है। हाँ सी बात क्या होती है कि सारी, कि जब कोई शरीर छोड़ता है हम सोचते हैं उसको तो जाना ही था, उसका तो रोल है। ये बहुत बड़े हमारे पास बड़े रेडीमेड डेफिनेशन बहुत सारे होते हैं, उस समय डेफिनेशन काम आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं देखना आपको। और किसी को कहना कि नहीं ये तो उसका था ना, उसको तो जाना था, ऐसा था। लेकिन आप यही, हम ये नहीं समझते कि वो इंसान अगर रो रहा है उसके लिए या उसको इमोशनल हो रहा है, वो सिर्फ उसके जाने के लिए नहीं है, उसके बाद क्या होगा वो कभी हमने सोचा है कि उस इंसान के परिवार में क्या होने वाला है, वो कैसे परिवार चलाएगा, या वो अकेली औरत है, या वो कोई छोटा बच्चा है, या माँ बाप है, वो हम नहीं देखते। हम क्या कहते हैं, वो जी मौत तो वो तो लिखा ही है ना जी, वो तो जो आता है उसको तो जाना ही होता ना, चलो वो अच्छा कहीं है हो गया। लेकिन हमने कभी ये बात जानने की कोशिश की है, समझने की कोशिश की है कि उस इंसान के लाइफ में आगे क्या होने वाला है? आप लोगों ने कभी ये किया है? आप लोग कभी जिसका किसी ने, किसी के घर में किसी ने शरीर छोड़ दिया था, नजदीकी संबंधी ने अचानक, ये एक्सपीरियंस आपको है कि नहीं? पहली बात, कितनों को है?
हमारे बारे में कुछ सोचता नहीं,
आप तभी जिंदा हैं। हाँ जब आप जाएंगे तब सोचेंगे। हाँ फिर अच्छा, आप लोगों में से कितने कम लोगों ने हाथ उठाया, दोबारा उठाई तो सॉरी, आप लोग बाकी लोगों को वंचित हैं, आपको एक्सपीरियंस नहीं हुआ। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्सपीरियंस, ये बहुत जरूर है। खुद को मारने से क्या होगा, खुद को मारने से फायदा, खुद तो चले जाएंगे। अब आप लोगों, जिन लोगों ने हाथ उठाया दोबारा, आप लोगों में से कितने लोगों को ये बहुत सहानुभूति दया की भावना, आपने जाके उनको पूछा, उनके घर गए, उनकी सिचुएशन देखी, कितनों ने सिचुएशन देख के कुछ किया? किया, ये सबसे बड़ी बात है। वो सिर्फ बस वही, योग को हम बहुत महत्व देते हैं, योग सबसे ग्रेट चीज है, बट सॉरी आई थिंक दिस इज वेरी ग्रेट थिंग। मैंने ये एक्सपीरियंस किया अपना पर्सनल जो मैं आपको बताना चाहती हूं, और मुझे लगा कि ब्राह्मणों में कंपैशन कम है। हम इतना वो लिख लिख के पढ़ पढ़ के ना कि ऐसे होता है कर्मा में ये वो, कंपैशन खत्म हो गया हमारा, ये बहुत दुख की बात है। एक तो नहीं है कंपैशन, हम कहते हैं हमारे अंदर प्रेम है, पर वो हाँ बाबा हाँ प्रेम, वो है प्रेम हमारे अंदर, इंसानों के लिए कितना प्रेम है, नहीं है। और इसलिए तो बदल नहीं रही है दुनिया अभी तक, ये चल रहा है अभी तक। मेरे साथ क्या एक्सपीरियंस हुआ कि मैं तो ज्ञान में कोई 30-31 साल पहले आई, और उस समय तो शादी हो गई थी और एक बच्चा भी था, बच्चा भी है सॉरी, तो उसका भी बच्चा आ गया सॉरी ग्रैंड मदर ओके। तो ज्ञान में आ गए, तो खैर जब ज्ञान में आते हैं तो जैसे कहा ना कि वो होता है नशा, तो बस करना ही करना ही करना है, जो आसपास वाले कुछ भी बोले, खैर वो तो लंबी कहानी है। तो ज्ञान में और कोई नहीं चलता घर में, इस तरफ उस तरफ दोनों तरफ, लेकिन अब कोई कहे जी आपके सब सहयोगी हैं घर में, तो हाँ हम कहते हैं हाँ सहयोगी हैं, पर वो सहयोगी नहीं करे तो वो क्या करे, हम तो घर छोड़ देंगे ना फिर, तो उन सहयोग तो करना ही पड़ेगा उनको, राइट, उनको मालूम है। सो एनीवे, मैं जापान में रहती हूँ, तो वहाँ पे ब्राह्मण भी बहुत कम है, और इंडियन ब्राह्मण तो है ही नहीं, तो ज़्यादातर जापानी जी, नहीं जन्म वहाँ नहीं हुआ, लकीली जापान भारत में जन्म हुआ। अब कहा कि सोल कॉन्शियस की जगह की बात मत करो, लेकिन उतनी बात तो करनी पड़ेगी क्योंकि भारत है, इट्स नॉट इंडिया बट भारत, भारत है ना, नहीं नहीं होल भारत। तो एनीवे, तो वहां पर अब घर में खैर बच्चा बड़ा हो गया, शादी होगी, चला गया, वो छोटा था, मधुबन भी लेकर आई थी, तो मेरे जो लौकिक पति हैं तो वो ज्ञान में बिल्कुल नहीं, इंटरेस्ट भी नहीं, और कोई भगवान को मानने की बात भी नहीं, कोई रिचुअल्स भी नहीं। तो एक तरह से अच्छा ही था कि कोई रिचुअल नहीं कि आपको करना पड़ेगा ये सब, वो तो उस तरह से तो छूट गए, ये तो घर वाले बोले ये करो वो करो। लेकिन कोऑपरेटिव का मतलब कि ज्यादातर जैसे प्यूरिटी की बात है उसमें नहीं टोकना, वेजिटेरियन की बात है तो घर में वेजिटेरियन ही बनाना है, जबकि हमारे सारे परिवार में ससुराल वाले में इतना खाते हैं कि आप पूछ नहीं सकते, कुछ भी खा सकते हैं। फिर पूजा तो ऐसे माहौल में रहना, करना सब किया, अब इतने साल हो गए, अब इस साल मैं यहाँ पर आई थी, यहाँ पर मधुबन में भी आई थी जनवरी में सॉरी, और डेढ़ महीना भारत में रह के वापस गई। तो यहाँ आने से पहले कुछ वो लोकेपति की तबीयत तो ठीक थी, वो बहुत फिट हैं, वैसे भी स्पोर्ट्स बहुत करते हैं, बहुत हेल्दी हैं, चेकअप कराने जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, देखने भी अच्छे, सब कुछ बढ़िया। तो आने से पहले कुछ बोले कि हाँ दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा दर्द है, तो ऐसे ऐसे डॉक्टर ने बोला पीछे हर्निया है आपका, और वो बस आपको थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह करना है, उसी से ठीक होगा, और कोई दवाई वाई नहीं है, ऑपरेशन का तो बोला ही नहीं। ठीक है, मैं तो यहाँ आ गई, वो भी अपना करते रहे जो करते रहे। फिर मैं यहाँ से वापस गई थी फरवरी 6 तारीख को, तो तब देखा तो वो स्टिक लेके चल रहे हैं, बहुत दर्द हो रहा है ज़्यादा, और थोड़ा सा भी चलते हैं तो बहुत सांस आता है, तो लगा कि बहुत दर्द के कारण सांस नहीं आ रहा है। ठीक है, वो सब चलता रहा। तो 10 दिन के बाद करीब क्या हुआ कि मुझे शिवरात्रि का प्रोग्राम के लिए मुझे कहीं जाना था, किसी और सेंटर में जाना था, वो दूर है वहाँ से काफ़ी, तो मैंने कहा कि मैं 3-4 बजे मैं जा रही हूँ कि वहाँ जाना है मुझे, एक रात के लिए जाना था बस। और उसी दिन, मतलब ये ड्रामा इतना बना हुआ है, जैसे कि उसी दिन क्या हुआ कि उनके जो लौकिक भाई हैं, मैं लंबा आपको क्यों सुना रही हूँ, बिकॉज ये बहुत मीनिंग है इसमें, उनके जो लौकिक भाई हैं वो बैंकॉक में रहते हैं, तो वो उसी दिन आए अपनी पत्नी के साथ, क्योंकि उनका अपना 60th जन्मदिन वहां मनाना था, वो वहां पैदा हुए हैं तो उनको वहां मनाना था, वो सुबह आ गए उस दिन, उनको मिलके करके उनको सब ठीक ठाक करके, वो एक और घर है वहां। फिर मैं 3-4 बजे चली गई किसी और सेंटर में शिवरात्रि के लिए, और वहां जाके सब प्रोग्राम वराम अगले दिन था पर सेटिंग करनी थी। फिर 10 बजे के बाद मैं अपना फोन बंद कर देती हूँ, तो मैंने फोन बंद कर दिया अपना, तो मेरे मन में ऐसा ख्याल भी आया, मैंने कहा अगर घर वाले को कुछ फोन करना होगा वो कहाँ करेंगे, इस सेंटर का नंबर तो उनके पास है भी नहीं, मैंने कहा ठीक है वो किसी से पूछ लेंगे, बात खत्म, इतना ही सोचा। फिर सुबह अमृत वेला के बाद, वैसे तो फोन नहीं खोलती हूँ लेकिन मुरली पढ़ने के लिए सुनने के लिए फोन खोला 5 बजे, तो उसमें मैसेज आया हमारी जो सिस्टर लौदेव रानी का कि भाई उनका हार्ट अटैक हो गया है, उनको हार्ट अटैक, सुन लिया हार्ट अटैक, कुछ नहीं हुआ, हाँ हार्ट अटैक हुआ ठीक है, अब क्या करना है नेक्स्ट स्टेप, मतलब प्रैक्टिकली सोचना अगला स्टेप क्या, अगला स्टेप ये है कि सेंटर से जल्दी जाना है, पहली ट्रेन लेके वापस जाना है, उन लोगों को बताना है कि शिवरात्रि के प्रोग्राम में क्या क्या करना है, ये सब ये। और जापान में वैसे भी लोग थोड़े इमोशनल नहीं होते हैं, तो हाँ हाँ वो क्या पूछ रहे हैं पहला सवाल, अच्छा प्रोग्राम क्या क्या होगा, फिर मैंने एक मिनट के सोचा अरे इतनी बड़ी बात हो गई आप पूछ रहे हैं प्रोग्राम क्या क्या होगा, मतलब इतने नॉन इमोशनल, एनी वे इट हेल्प्स ऑल्सो बट इट्स नॉट सो गुड। सो फिर मैंने पहली ट्रेन करी, और रास्ते में मैं वो जो बहन है मेरे साथ, मैं उसको डिक्टेट कर रही हूँ कि आप जो खाना बनाएंगे ये कि पुलाव कैसे बनेगा, ये कैसे बनेगा, वो सब उसको बता रही हूँ, वो उसको रिकॉर्डिंग कर रही है वो, ताकि वो बना सके, इतना मतलब प्रेजेंस ऑफ माइंड था। उसके बाद ट्रेन ली, और ट्रेन में भी सोच रही हूँ कि अच्छा अरे भाई इसका तो अभी हार्ट अटैक हो गया है, अभी तो उस डॉक्टर है ना मुझे एक जो कार्डियोलॉजिस्ट उसके पास जाना पड़ेगा, और एक जो फ्रेंड है ना उसको उसके हस्बैंड को हुआ था तो पूछना पड़ेगा कि खाने पीने का कैसे करते हैं, लाइफस्टाइल तो बदलनी ही पड़ेगी, ये सब विचार चल रहे हैं मेरे, बट ठीक है। और फिर उसके बाद मैंने वो सब मैसेज भेज रही हूँ अपने घर वालों को, फिर उनको लगा इसको तो पता ही नहीं है इसको, तो फिर उसने बोला मुझे, क्योंकि ट्रेन में बात करना मना होता है वहां तो हम बात नहीं करते हैं, तो फिर फोन आया तो बाहर जाके ट्रेन डब्बे से थोड़ा, हाँ ट्रेन माने बाहर जंप नहीं लगाई मतलब साइड में फिर मैंने नहीं वैसे मतलब एक दूसरे करते हैं लेकिन फोन पे नहीं करना चाहिए, मतलब थोड़ा मना होता वैसे तो, कभी कभी लोग करते भी हैं लेकिन हम लोग नहीं करते हैं। तो फिर बाहर थोड़ा जाके मैंने पूछा तो बोले कि नहीं वो तो चले गए, ही इज गॉन। अच्छा गॉन, ठीक है गॉन, अब क्या करना है, कुछ हुआ ही नहीं तो बस क्या करना है अभी, क्योंकि बहुत चीजें करनी पड़ती हैं वहां। तो फिर मैंने बोला कि हाँ, बोले कि अच्छा अभी क्या है कि वो जब गए थे वो तो अचानक बस मतलब वो कहीं जा रहे थे टैक्सी में, 5 मिनट वो टैक्सी में ही पास्ट अवे, और कहीं मिल के आए थे सबको, बहुत लोगों को, सब बहुत हैरान थे, चकित थे कि अचानक कैसे हो गया। तो बोले कि आप लोग आप आइए, क्योंकि वो जब गए थे उनके पास एक कार्ड होता है हमारा आइडेंटिटी कार्ड, वो नहीं मिल रहा है, वो था नहीं उनके पास, तो फिर पुलिस को बहुत शक हो रहा था कि ये कहाँ है, वाइफ क्यों नहीं है यहाँ पर, फोन क्यों नहीं उठा रही है, पहले तो लोग शक ही कर रहे थे ना वो, तो ये सब हो रहा है। और फिर मैं घर गई तो वो ढूंढा, कार्ड मिल गया, और मतलब इतना प्रेजेंस ऑफ माइंड था, मैं खुद को मैं बाद में सोचती हूँ कि कमाल है कि कैसे इतनी प्रेजेंस ऑफ माइंड थी, इसको डिटैच कहेंगे या इसको स्ट्रेंथ कहेंगे या इसको क्या कहेंगे, आई स्टिल डोंट नो। और एक एक चीज देखना करना, और फिर उसके बाद फिर मुझे पुलिस स्टेशन जाना पड़ा, क्योंकि वहां पे पोस्टमार्टम कराना है कि नहीं कराना है, आपको साइन करना है, बॉडी तो दिखाते नहीं है वो ले गए थे ना, वहां करना है। फिर कुछ घंटे बाद फिर जहां बॉडी रखते हैं वहां जाके भी साइन करना पड़ा, ये करना पड़ा, और तब तक भी नहीं देखा कितने घंटे हो गए इस बात को, क्योंकि उनका प्रोसीजर होता है, वो लेकर आते हैं ठीक से, फिर वो एक गाड़ी होती है स्पेशल, उसमें लेके आए, तो फिर एक फ्यूनरल पार्लर होता है वहां, फ्यूनरल जहां करते हैं, कोई रोना धोना नहीं, कुछ नहीं, वैसे ही टाइम नहीं है तो फिर वो लेकर आए तो पहली बार देखा सामने, और इतने चेहरे पर इतनी बढ़िया मुस्कान, और एक मुस्कान एक होती है ना कि आप पीसफुल मुस्कान, ऐसे जैसे देवी देवताओं की, एक होती है कि वाह क्या बढ़िया लाइफ है, यू नो इस तरह की मुस्कान, वैसी थी स्माइल, अमेजिंग। तो मतलब आत्मा बहुत अच्छी तरह से गई, वो देखकर मुझे अच्छा लगा। फिर उसके बाद एकदम से लोग आने लग गए, सोचने का टाइम ही नहीं, लोग आ रहे हैं वहां पर, भारतीय तो आपको संस्कृति पता ना कैसी है, वो बस लोग आ जाते हैं, बस देखते नहीं आओ तब। फिर उसके बाद सब लिखा पढ़ी करनी पड़ी बहुत सारी, कि अच्छा फ्यूनरल करेंगे, आपको कौन सा फ्यूनरल करना है, ए पैकेज बी पैकेज, आपको कितने पैसे देने हैं, आपको सेमेट्री कौन सी में जाना है, आप कितने बजे सेमेट्री जाना चाहेंगे, आप दो गाड़ियां लेंगे गाड़ियां लेंगे, ये सब करना पड़ता है और मुझे ही करना पड़ा। ठीक है, मेरे पास और लोग थे, बेटा भी आ गया था और फ्रेंड्स थे, बट एक्चुअली सारा उसका सोचना उसके बारे में तो मुझे ही करना पड़ेगा ना, डिसीजन मुझे लेना पड़ेगा, बिकॉज आई एम द वाइफ। वो सब करना पड़ा बैठ के, और फिर वो इतना भी पूछते हैं, दो पतीले तो नहीं कहेंगे, दो लेके आते हैं कंटेनर्स, आपको छोटा कंटेनर चाहिए कि बड़ा चाहिए जब अस्थियां आप लेकर आएंगे, भारत में होता है ये नहीं होता है। और अचानक तो वो सब किया, उसके बाद लोग आ रहे हैं, फिर वो कहते हैं बॉडी को एम्बाम्बिंग कहते हैं, क्योंकि वो बॉडी रखनी पड़ती है एक दो दिन, वहां रूल है तो उसको कुछ चेंज करना पड़ता, घर जाए फटाफट जाओ कपड़े लेके आओ ये करो, वो सब किया अपने कपड़े सब। अब लोग आ रहे हैं, उसको वेक कहते हैं, पहले दिन जब शरीर छोड़ता है कोई, बहुत लोग आ रहे हैं, बहुत लोग आए अचानक थे और संडे था, और लोग बहुत पसंद भी करते थे उसको, मुझे सब लोग जानते हैं, रो रहे हैं बहुत रो रहे हैं लोग, मैं लोगों को कह रही हूं मत रो ठीक है, इट्स ओके, लोग रो ही रहे हैं, फ्रेंड्स दूसरे सब रो रहे हैं सब, मैं उनको कह रही हूं कि ठीक है, मैं स्माइल कर रही हूं। तो एनीवे वो सब हुआ, उसके बाद फिर एक दिन के बाद फिर फ्यूनरल था, उसमें भी बहुत लोग आए, तो उसमें क्या होता है फ्यूनरल में लोग स्पीच देते हैं कि उसके बारे में कि कैसा था ये था, या बचपन की बात बताते हैं कुछ, तो फिर मैंने भी थोड़ी सी स्पीच उसमें दी, इतना प्रेजेंस ऑफ माइंड था कि खड़े होकर स्पीच देना वहां पर और उसमें कुछ बातें मैंने बोली, और उसमें हम ऐसे बात करते हैं जैसे कि वो इंसान वहीं है अभी तक, क्योंकि आत्मा तो वैसे भी होती है ना आसपास। तो उसमें मैंने सिर्फ एक बात कही कि एक अचानक से प्रिपेयर नहीं किया था, मैंने उसको बोला कि थैंक यू वेरी मच, मैंने उसको बोला कि विजय थैंक यू वेरी मच, क्यों, क्योंकि आपके कारण शादी होकर मैं जापान में आई, और जापान में आके मुझे ब्रह्मा कुमारी से कनेक्शन मिला, और ये मेरी अब लाइफ है ये, सो आपका बहुत बहुत आभारी हूं मैं कि आपने मेरे लिए किया। मैंने उतना तो थैंक यू बोल ही दिया उस इंसान को, और भी कई चीजों के लिए थैंक्स बोल सकती थी, लेकिन उस समय यही निकला मेरा तो मैंने तैयारी नहीं की थी। तो वो बोला, फिर लोगों ने देखा कि भाई इतनी स्ट्रेंथ है, ऐसे है, लोग इंप्रेस तो होते ही हैं, और सब ने यही कहा कि आप इतने सालों से ये जो आप स्पिरिचुअलिटी पर चल रहे हो इसके कारण से आपको ये स्ट्रेंथ मिली है क्या। उसके बाद चले गए, अब लोग कुछ काम है लोग सब पूछते हैं आपको, उस समय लोग बहुत भावुक हो जाते हैं ना, इमोशनल की बात अब चल रही है, लोग बहुत इमोशनल होते हैं, आप क्या कर सकते हैं आपके लिए इतना बुरा हो गया। उसके बाद कोई नहीं आता है, मैंने अनुभव किया है, आपके कुछ एक दो फ्रेंड्स हो सकते हैं, बाकी लोग उनको या तो लगता है कि हम क्या बात करें, हम कैसे हेल्प करें, क्या बोलें, ये होता है, तो वो जो टाइम होता है ना वो बहुत बुरा टाइम होता है। घर पे कोई नहीं, मतलब सब चले गए जो भी आए थे, पांच हफ्ता चले गए, घर पे कोई नहीं, आप अकेले हैं, आपको सब संभालना है, आपकी कितनी लीग, मतलब बहुत लंबी कहानी है। तो ऐसे तो इमोशनल स्टेबिलिटी की जो बात हो रही है ना, मैं कहती हूं कि जैसे 1995 में वहां अर्थक्वेक आया था, और उसमें भी कुछ नहीं हुआ था, बस अर्थक्वेक आ रहा है इतना ही ध्यान आया, बस अब क्या करना है, ये भी आया तो क्या करना है, बस इतना ही। तो मैं आपको क्या कह रही हूं कि हमारे जीवन में ये सब चीजें आनी चाहिए, मतलब ये अर्थक्वेक आने चाहिए, सुनामी आनी चाहिए, डेथ होनी चाहिए किसी की, बहुत बड़ी बातें होनी चाहिए, जब तक नहीं होती हमें पता नहीं लगता है कि हमारे अंदर कितनी स्ट्रेंथ है। उस समय भावुक नहीं हो सकते हम, उस समय इमोशनल नहीं हो सकते हम, इमोशनल होंगे नहीं होंगे तो अच्छा ही है, क्योंकि स्टेबिलिटी, इसी को इमोशनल स्टेबिलिटी कहा जाएगा ना। खैर ये तो बहुत थोड़ा लंबा हो गया, तो मैं ये पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बता रही थी। पर कई बार हम इमोशनल हो जाते हैं जब हमें कुछ नहीं होता है, पर जब जिसको हम पसंद करते हैं उसके साथ अगर कुछ हो जाए, उसको अगर कोई बुरा भला बोल दे, उसको कोई कुछ दबा रहा है, तंग कर रहा है, तो हमें गुस्सा आता है, क्योंकि हमको उससे अटैचमेंट होती है ना, नहीं कोई और कर रहा है उसके लिए, मुझे कोई नहीं कर रहा है, लेकिन उस समय हम इमोशनल हो जाते हैं, और उस इंसान के लिए हम बुरी भावना रखते हैं, बजाय इसके कि हम दया भावना रखने, हम बुरी भावना रखते हैं। ये मैंने खुद अभी भी अनुभव किया थोड़े दिन पहले, तो मुझे लगा कितना गलत है ये। अगर वो उसके लिए कर रहा तो उसका अपना कार्मिक हिसाब है ना उन दोनों का, क्योंकि पर मुझे ये इंसान पसंद है बहुत, और कोई उसके लिए कर रहा है तो मुझे बहुत बुरा लग रहा है। नहीं, बड़ों के लिए भी, बड़ों के लिए भी। आपको सपोज आपकी कोई अंकल आंटी, आप उसको बहुत पसंद करते हैं और बहुत अच्छे इंसान है वो, और दूसरे उनको तंग करते हैं तो आपको उनके लिए गुस्सा आता है, उनको आप उसको थोड़ा डिसलाइक करना शुरू कर देंगे, आपको एंगर आपके वर्ड्स में भी आ जाएगा, और आफ्टर थॉट आप सोचते हैं अरे मैंने ऐसे कैसे बोला, मैंने ये शब्द बोले क्यों, और लोग उस बात को पकड़ लेते हैं, अरे आप तो ब्रह्मा कुमारी हो। जब भी कुछ जरा सी मुझसे गलती जाती है तो क्या बोलते हैं, आप तो ब्रह्मा कुमारी हो, आप स्पिरिचुअल हो, आप ऐसे करते हो, चाहे उनके अंदर तो 10,000 हो लेकिन हमसे वो एक्सेप्ट नहीं, वो परफेक्ट देना चाहते हैं। तो ये जो कई बार हमारे अंदर जो हमारी लाइफ के आसपास जो इंसिडेंट्स होते हैं वो इसलिए होते हैं कि वो दूसरा आदमी आपको वैसे परफेक्ट दिखना चाहता है, क्योंकि वो परफेक्ट नहीं हो सकता, और वो कह रहा है कि आप इस पे चल रहे हैं, आप इतना कुछ तो कर रहे हैं, इतनी छोटी सी बात पे आप क्यों कमजोर हैं। सो आई थिंक ये जो लोग आपको क्रिटिसाइज करते हैं आपके आसपास, क्योंकि मैंने बहुत एक्सपीरियंस किया है क्रिटिसिज्म बहुत ज्यादा, तो ये आपको स्ट्रांग बनाता है क्रिटिसिज्म, पर स्ट्रांग तो बनाता है, पर उसके साथ साथ हमको उस आत्मा के लिए भावना अच्छी है कि नहीं वो देखना पड़ेगा जो मुझे क्रिटिसाइज करता है। एक्चुअली दैट पर्सन इज आपको उठा रहा है, वो आपका स्टेप ऊपर कर रहा है। तो ये सब चीजें मुझे बाद में मतलब नोटिस में आई, आफ्टर ही लेफ्ट द बॉडी, मुझे ये बातें बाद में सोची मैंने, पहले मैं सोचती थी क्रिटिसाइज करते हैं बार बार ये करते हैं, मैं सोचती थी नेगेटिव था वो थिंकिंग। तो अब एक जैसे एक बड़ा अच्छा सा लगने लग गया कि भाई समझ में आ रही बातें, उस समय इमोशन में कई बार समझ में नहीं आती है, तो ये स्टेबिलिटी की बात इसलिए चल रही है। अभी टाइम नहीं इसलिए आपको ये सेकेंड एपिसोड तो इसका होगा नहीं शायद, पर इसके ये बहुत लंबा है ये इमोशनल स्टेबिलिटी। और ये आपने जैसे कहा था कि सोल कॉन्शियस में मेल फीमेल का नहीं होना चाहिए, बट ये है, क्योंकि फीमेल हरासमेंट बहुत होती है, खासकर हमारे देश में यहाँ पर हरासमेंट होती है, फिजिकली हरासमेंट होती है, इमोशनली हरासमेंट होती है। ये आप जब तक फीमेल बॉडी में नहीं है आपको नहीं पता लगेगा ये, सॉरी पिछले जन्म में किया हो तो पता नहीं, इस जन्म का आपको नहीं होगा। आप कई बार मैं लोगों से बात करती हूँ कि कई बार मुझे लोग बोलते हैं हो भी गया तो क्या बड़ी बात है, वो ठीक हो जाएगी ना, वो अपना कर लेगी ना, लोग मुझे बोलते हैं मेन, क्या कहेंगे आप, आपको कोई फीलिंग ही नहीं है, आप समझ ही नहीं पा रहे उस बात को, वो आत्मा, हम बोले आत्मा है, कितना हम कोशिश करते हैं, कितना ध्यान रखते हैं, अकेले नहीं जाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, क्यों होने दो, ड्रामा है ना, एक्सपीरियंस क्यों करो, कितना बड़ा एक्सपीरियंस है ये, इसमें सोल कॉन्शियस हो जाएंगे अगर वो किसी फीमेल बॉडी में है आत्मा, कैसा उसका फीलिंग आएगा। कर्मा का अकाउंट वो सब छोड़ दो आप, ये सबसे ज्यादा बुरी चीज है, सबसे ज्यादा बुरा इसको मैं कहूंगी, सबसे बड़ा पाप उसमें। उस समय वो लेडी इमोशनली स्टेबल रह सकेगी, नहीं, स्पिरिचुअल पाथ पे अगर ये बीके के साथ हो जाए। कल लस्ट की बात चल रही थी इतनी बड़ी कि हमारे अंदर वो नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर कोई आपको कर दे तब क्या होगा, आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी का क्या होगा, आपके ज्ञान योग का क्या होगा, ये बातें सबको जानना जरूरी है, खासकर जो मेल बॉडी में। हाँ, बिकॉज दिस इज द यो, इसका जो घात होता है सबसे ज्यादा घात है ये। तो ये इमोशनल स्टेबिलिटी में काफी बातें आती हैं, सिर्फ डेथ की बात नहीं है, ये हरासमेंट की ये सब बातें आती हैं, और ये बहुत बड़ा टॉपिक है, और हम इस टॉपिक पे बात नहीं करते हैं, क्योंकि हम बात करते हैं योग पर, आत्मा पर, अच्छा है, लेकिन जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स चल रही हैं वर्ल्ड में उसके बारे में हम क्या कर रहे हैं टॉक, उसके बारे में हम क्या डिस्कशन कर रहे हैं, हम उसको अवॉइड करते हैं। हमको प्यूरिटी लानी चाहिए, हमारा ये होना चाहिए, या हमारी प्यूरिटी से बदलेगा ये टॉपिक भी। मैंने कहा था सचिन भाई को कि हम जो इतना सब कर रहे हैं उससे चीजें बदलेंगी बाहर की, नहीं बदलेंगी वो तो और भी खराब हो जाएंगी, तो हमारा ये करने का मकसद क्या है सब। ये बहुत चीजें हैं इमोशनल स्टेबिलिटी में, लेकिन इसके लिए इमोशनल स्टेबिलिटी आएगी जब आपके अंदर कंपैशन बहुत होगा। ये मुझे देखना कि मेरे अंदर कितना कंपैशन है, एक प्रेम भावना अलग चीज होती है, लेकिन सच में सोल कॉन्शियस का मतलब है कि आई हैव सो मच कंपैशन फॉर दिस सोल, और समझना कि वो इंसान, वो आत्मा किस चीज से गुजर रही है, किस दौर से गुजर रही है, उसको क्या हो रहा है, होना चाहिए नहीं होना चाहिए, ये कमजोर है, ये तो लौकिक है, ये तो बीके नहीं, रबिश, ये है सच्चा सोल कॉन्शियस होना। तो इसलिए इमोशनल स्टेबिलिटी में काफी बातें आएंगी, लेकिन बीमारी में भी आती हैं। बहुत ज्यादा बीमार हो गए। अब मैं क्या कहती हूँ सबको, क्योंकि मैं तो ओपनली बात करती हूँ, मैं सबको क्या कहती हूँ, अगर कोई मधुबन में बीमार हो जाए, उसको जो तकलीफ हो रही है, दर्द हो रहा है, उसी को सहना है, लेकिन उसको कम से कम सिक्योरिटी तो है ना कि मेरे आसपास 10 लोग हैं मुझे देखने के लिए। एक बीमार हो जाता है अस्पताल में, उसके आगे 10 लोग हैं देखने वाले, पैसे की प्रॉब्लम नहीं है आपको, आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आप बीमार हो गए, आपके पास पैसे भी नहीं है, आपको देखने वाला कोई नहीं। हम विदेश में रहते हैं ना, बीमार होते हैं, कोई देखने वाला नहीं होता है, उस समय रोना आएगा कि नहीं आएगा? प्रैक्टिकली पता नहीं लगता, जब तक आपकी आसपास की वो चीजें बदलेंगे नहीं ना, तो पता नहीं लगा। अभी अभी कंफर्ट जोन में बैठे हैं ना, कंफर्ट जोन है ये, समझते हैं कंफर्ट जोन, कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, थोड़ा कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, निकलिए इसमें नहीं, इसमें इसमें कंफर्ट जोन आपका है कि लोग आपको बार बार बोल रहे हैं, लोग आपको उस नजर से देख रहे हैं, बट मैं फिजिकली की बात कर रही हूँ। आप बीमार हो गए, आप बीमार हो गए, आप चले जाएंगे डॉक्टर सन के पास, भाई अब फिजिकल में देखो क्या है कि कम से कम आदमी आपकी तकलीफ कोई चेक करने वाला है, बीमार डॉक्टर है, आपको लोग मिल जाएंगे, कुछ तो होगा ना आपका फायदा, फायदे तो हैं। आप कहेंगे जी फिर यहीं रहना शुरू कर दो, ये भी कह सकते हो आप, बट बात उन लोगों की चल रही है जो बाहर रहते हैं। ये जो क्लासेस हैं ये सिर्फ ब्राह्मणों के लिए नहीं है ना, ये तो कि ब्राह्मणों के लिए सिर्फ, ये ब्राह्मणों के लिए सिर्फ ये क्लासेस, और किसी के लिए नहीं है, ये क्या मतलब हुआ? नहीं, मतलब कहने का है कि ये जो हम बातें यहां करते हैं वो बातें सिर्फ हमसे रिलेटेड है, और आर दे रिलेटेड टू ऑल्सो द पीपल आउटसाइड, बिकॉज हमें सबकी सेवा करनी है ना, ह्यूमैनिटी। तो ह्यूमैनिटी करने के लिए हमको थोड़ा बाहर सोचना पड़ेगा ना, ह्यूमैनिटी। हम ये क्यों कर रहे हैं योग, हम ये क्यों कर रहे हैं इतना सारा, ये बाबा कह रहा है ये त्याग, ये सब क्यों कर रहे हैं? सब अपने लिए तो कर रहे हैं, लेकिन ह्यूमैनिटी के लिए है ना ये। तो जब तक हम सारे वर्ल्ड को अपना नहीं समझेंगे, हम कुछ नहीं कर पाएंगे, बहुत लिमिटेड हो जाएगा। तो इसलिए इमोशनल स्टेबिलिटी बहुत बड़ी चीज है, और वो जब तक कोई धक्का लगे, कोई बड़ी चीज हो, तभी पता लग सकता है। छोटी मोटी तो होती रहती है, इरिटेशन ये सब, वो तो कोई बड़ी चीज नहीं है, वो तो ठीक है। तो इसके अब रेमेडी क्या है वो तो आप लोग खुद सोचेगा, क्योंकि अभी टाइम ज्यादा हो गया, कि इसके लिए क्या करना चाहिए। ओम शांति।